نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Amazed by Al-Asmaul Husna. آج ہم اس سیریز میں اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام جو ایک ہی روٹ سے ہیں اور ان دونوں کو القادر اور المقتدر کے نام پر ہم دونوں جانتے ہیں اور بہترین طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک نام ہمارے لیے ایک ایک انمول موتی ہے اس کو چنتے جائیے اور ایمان کی دولت جمع کرتے جائیں کسی کو بھی جاننا ہونا تو اس کے نام اس کی خوبصورتیاں اس کی صفات یہ کافی ہوتی ہیں شکل رنگ باقی چیزوں کو کون دیکھتا ہے ہم نے اپنے مالک کو نہیں دیکھا اور دیکھیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک کہ اللہ ہم تیرے خوبصورت چہرے کے دیدار کی متمنی ہیں بغیر دیکھے تجھے تیری خوبیاں جان کر تیرے ناموں کو جان کر ہمارے بھی ان گناہگار دلوں میں یہ خواہش آتی ہے کہ مالک ہم تیرا دیدار کریں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیات کیوں نہ ہوں ہیں چھوٹی اللہ کے ساتھ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے لوگوں سے ملے ان کے ساتھ تعلق جوڑے کہاں کا بندہ کہاں بات کرے لیکن اگر کبھی کسی کو کسی ایسے بڑے انسان سے ملنے کا موقع مل جائے جو خوبیوں سے بھرا ہو خیر سے بھرا ہو یا پھر ہر ایک کے ذوق کے مطابق اس کام میں ان ہو تو کیا دل کا حال ہوتا ہے اسی طرح میرا مالک جس نے سب خوبیوں والوں کو پیدا کیا اس کے بارے میں جاننا اس کا ذکر کرنا اس کے تذکرے کرنا یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے تو ہم اپنے مالک کو کہتے ہیں کہ اے مالک ہمیں ضائع نہ کرنا اور بہترین طریقے سے تو ہم سے راضی ہو جانا تو آئیے ذرا سا اس لفظ کی گہرائی میں چلتے ہیں القادر اور المقتدر دونوں کا روٹ کیا ہے قاف دال را جب القادر ہے تو فاعل کا وزن الفاعل کہہ لیجئے عام قدرت عام لفظ ہے فاعل کے وزن پہ مکمل قدرت والا اگر قادر ہوتا نا تو قدرت رکھنے والا یا قدرت والا جب ال لگ گیا تو مکمل قدرت والا ایسی ہے کسی کی نہیں اور جب یہ لفظ مقتدر مفعل کے وزن پہ آتی ہے مفعل کہہ لیجئے تو اقتدار والا لفظ اقتدار ویسے بھی مقتدر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا تو قادر قدرت والا اور مقتدر اقتدار والا جب آپ ان ناموں کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا مالک حقیقت میں ساری دنیا کو لے کر چلنے والی ہستی ہے اصطلاحی معنوں کو اگر ہم دیکھیں تو القادر کی قدرت وسیع اور بے پناہ ہے اور وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے اسے کسی کی مدد اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں وہ صرف اپنی مشیت اپنے ارادے اور اپنے فیصلہ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے امیجن کیجئے ذرا دنیا میں کوئی سب کچھ تو چھوڑیں کچھ بھی کر لے تو بڑی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ جتنا زیادہ آپ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ کا مالک بالکل بے نیاز ہے کسی کی ضرورت نہیں پیچھے والا نام یاد کیجیے الصمد نہ مدد نہ سہارا نہ اسباب نہ وسائل کچھ بھی تو نہیں چاہیے صرف مشیت ارادے اور فیصلہ کن کیا آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں کو پڑھ کر سن کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر اس چیز کو مان جائیں ہماری زندگی بدل جائے قبلے درست ہو جائیں ہم لوگوں کے بارے میں کبھی بھی بڑی بڑی باتیں نہ کریں اور چھوٹی بھی نہ کریں ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں مجھے کیا فلاں مجھے کیا فلاں کچھ نہیں تو ٹھیک ہے یعنی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی میرا مالک وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس تک میری سوچ بھی نہیں جاتی المقتدر ہے آپ کا دل پھٹ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے احساس کے ساتھ انسان برداشت نہیں کر سکتا زندگی میں کبھی کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں ایسے لمحے آ جاتے ہیں کہ ایک انسان تصور کی حد تک बेबस हो जाता है, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, ये किस तरह हुआ। वो मालिक अल-क़ादिर और अल-मुक़्तदिर, और वो हस्ती है कि जिस पे नज़रें लगाने के बाद बंदे के पास भी कुदरत आ जाती है। जैसे आप दिए के साथ दिया रखें ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ असर आ जाता है। अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ताल्लुक जोड़कर बंदा बेबस नहीं रह सकता, कमज़ोर नहीं रह सकता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप इस बात को पहचान जाते हैं ना, तो फिर आप ये भी मान जाते हैं कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका काम बस यही है, क्या, किसे हुक्म दे कि हो जा और वो हो जाती है। क्या दुनिया में कोई ऐसा है, आप सबसे ज्यादा भी कोई लफ्ज बोलते हैं ना तो रिमोट बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल, रिमोट सिस्टम, रिमोट 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 रिमोट। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती आप देखिए कि कैसे आपको अपनी कुदरत का एहसास दिलाता है अल्लाह ताला। इसके ऊपर कभी गौर करे इंसान तो बिल्कुल बेबस हो जाए, ऐसे लगता है जैसे लफ्ज ही नहीं अदा होते, आपके कंट्रोल से चीजें बाहर होने लगती हैं। और कुन भी तो सिर्फ वो हमारे लिए कहता है, वरना उसको तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो वो है साहिबे कुन फयकुन। अब सिर्फ इस लफ्ज के ऊपर गौर कीजिए, मैं इसकी कैलीग्राफी को जब देखती हूँ ना तो अजीब सी कैफियत होती है। लफ्ज जरा गिनिए, काफ नून, फिर फा, फिर या, फिर काफ कॉमन है, वाव आ गया, नून फिर कॉमन है। देखा जाए तो टोटल 5 लफ्ज हैं, कुन फयकुन, और इसके साथ कितने बड़े बड़े फैसले जुड़े हुए। अल्लाह ने न जाने कब कहाँ किस चीज पे कुन कहा होगा, किसी की जिंदगी पे, किसी की मौत पे, किसी के नफे पे, किसी के नुकसान पे। आप अल्लाह से इस नाम के साथ दुआ किया करें, ए साहिबे कुन फयकुन, मेरी इस चीज पे खैर का कुन कह दे। लोग कहते हैं नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, तू अपनी शान दिखा, तू कर दे ये काम। ए मेरे मालिक तेरे इख्तियार में है, तू मुझसे ये काम ले ले। ए मेरे मालिक मैं कमजोर हूँ, तू कमजोर नहीं है। ए मालिक डॉक्टर कहते हैं ये बीमार है, ये नहीं बचेगा, तू कुन कह दे। ए मेरे मालिक लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा, तू कह दे कुन। ए मेरे मालिक लोग कहते हैं ये घर नहीं बसेगा, तू बसा दे इस घर को। इस तरह लाड किया करें अपने मालिक से। वो हस्ती जब आपके किसी रुके हुए काम पे कुन कह दे, फिर कोई उसको नहीं रोक सकता, फिर किसी की मजाल नहीं है पर मारे। पर मारना तो बड़ी दूर की बात है, कोई इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। वो हस्ती, वो मालिक, वो रब, वो कायनात का रब, वो मालिक, आपकी मेरी जिंदगी का मालिक, जब इन सारी चीजों को लेकर हमारे सामने रखता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि उस मालिक ने दुनिया में अपने लफ्ज़े कुन के साथ क्या कुछ नहीं पैदा कर दिया। एक लम्हे के लिए जरा सोचिए दुनिया में क्या कुछ है, पहाड़, हजर, शजर, और ये और वो और ये, सोचते चले जाएं, बेबस हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी अकल वैसे स्ट्रक हो जाती है जैसे कभी आपका लैपटॉप स्ट्रक हो जाता है ना, पावर पॉइंट्स कभी बहुत हैवी होते हैं ना, तो आप जरा जल्दी जल्दी में उनको करेंगे ना क्लिक, तो वो स्ट्रक हो जाता है, रुक जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में आप इसकी मिसाल ले लेते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती देखिए कि कैसे वो आपके मेरे इन सारे मामलात को लेकर चलता है। और आपको मुझे जितना ज़्यादा अल्लाह सुबहाना ताला की इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करने का मौका इस सीरीज़ में मिल रहा है, शायद ही किसी में मिला हो। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल सच है। इसके बारे में गौर करके तो इंसान अपने आप को और भी ज़्यादा बेबस पाता है। और फिर हर किस्म की तब्दीली, तगैयुर, महव और इस्बात, यानी महव कहते हैं मिटाने को और इस्बात कहते हैं साबित करने, यानी अरेज करना, महव के अरेज और इस्बात के ये ठप्पा लगाना, स्टैंप। नसह और अहकाम इसी के हाथ में है। बोलिए, हर किस्म की तब्दीली और तगैयुर, महव व इस्बात, नसह और अहकाम इसी के हाथ में है, यानी जिसको कहते हैं ना इसके हाथ में मोहर है, जिस पे मर्जी लगा दे। और अल मुक्तदिर में जरा देख लीजिए, दोनों का फर्क भी समझ आएगा। वो जो अपनी हिकमत के मुवाफिक जिस हुक्म को चाहे रखे, जिसको चाहे मनसूख कर दे, इक्तदार जो उसका। अब देखिए दुनिया के छोटे छोटे साहिब इक्तदार लोगों को आप देखें तो आपको बात समझ आती है ना, वो क्या कुछ कर लेते हैं, लोग कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता और चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हालांकि चिड़िया क्या, पूरा चिड़ियाओं का एक टोला आ जाए और पर क्या जितने मर्जी मारे, लेकिन बातें बनी हुई। इसी तरह जिस कौम को चाहे मिटा दे और जिसे चाहे इसकी जगह जमा दे। और ये आयतें जहां कुरान पाक में ना, वहां बिल्कुल यम हो सूरत रात के एंड पे आई आयतें। अभी आगे हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस चीज की तासीर को बदलना चाहे बदल दे और ना बदलना चाहे तो ना बदले। अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती को जब आप महसूस करते हैं तो आपको हैरत नहीं होती? आप देखिए, एक ही चीज है, कोई एक खाता है तो उसको बहुत फायदा होता है, जब कोई एक खाता है तो उसको फायदा होता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है, होता है ऐसा? बस उसको महसूस कीजिए, जो वादा शरायत की मौजूदगी में जाहिर कर दे, जो चाहे मौकूफ कर दे, यानी शर्तें अपनी जगह पड़ी रहेंगी, अल्लाह चाहे तो जाहिर करे उस चीज को, चाहे तो छोड़ दे। तो अल मुख्तदिर का इक्तदार है। आइए देखते हैं कि इस नाम से मुतालिक सलफ सालेहीन के क्या अकवाल है, उन्होंने इसको कैसे समझा। तो सबसे पहले हमारे पास कौल है इमाम बहकी का, कहते हैं हुवल्लसी लहुल कुदरतु शामिलतु बल कुदरतु लहू सिफतुन कायमतुन बिजातिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की कुदरत कुदरत आमा है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा और हर मौके पर हासिल है, और यह सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कायम है। जरा जज्ब करें, ऐसे जब पढ़ते हैं ना तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो नहीं आता जब तक मैं उसको अपने लफ्जों में ना समझूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की कुदरत, कुदरत आमा है, ठीक है ना, आम कुदरत टू एवरीवन, जो हर लम्हा, सोचिए लम्हे कितने होते हैं एक दिन में, हर आन, हर घड़ी और हर मौके पर हासिल है, और ये सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ कायम है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप देखिए कि उसका तो हम इहाता ही नहीं कर सकते, बाकी चीजों की तो बात क्या करें। इसी के बारे में अगर आप देखें कि जब आप इस कॉल को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपके दिल में वाकई एक एहसास होता है ना, जैसे सूरत तलाक आयत 12 में आता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सब असमावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا। इस लफ्ज को सोचिए, قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, कितनी बड़ी हस्ती होगी। हम कितना को देख सकते हैं एक वक्त में, एक मिनट में, कुछ वक्तों में हमारे पास कितना कोई हाथा कर सकते हैं। और वो कहते हैं बिकुल्ली शयीन, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान बनाए और उसी के मिसल जमीनें भी, इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह तआला ने हर चीज को बाएतबारे इल्म घेर रखा है। तो फिर उसकी वुसअतों का कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। इसी तरह इमाम जुज्जाज कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल कादिर जल्ला जलालुहू हैं, यानी जो चाहते हैं इसको वजूद बख्शने पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई भी चीज किसी भी काम से रोक नहीं सकती, और ना ही, यानी पहले एक चीज को महसूस करें ना, फिर उसके बाद आप दूसरी को महसूस करेंगे। एक चीज क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला कादिर है, ठीक है, जो चाहते हैं वो करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई भी चीज किसी भी काम से रोक नहीं सकती, और ना ही इनका कोई मतलूब फौत हो सकता है, यानी अल्लाह कोई चीज तलब करे और वो ना हो, ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत का मतलब हुआ। बंदों को भी कुदरत हासिल होती है, लेकिन इनकी कुदरत आर्जी है। बंदे को जो कुदरत और ताकत हासिल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जानिब से अता करदा है, और ये ताकत बंदे के पास समानत है। इस ताकत में कमी कमजोरी भी है, यानी इसकी कुदरत इसके काम नहीं आती, और कभी यह कुदरत काम भी आ जाती है। अल्लाह ताला ही हकीकी कुदरत वाले हैं। अल्लाह ताला पर इज्ज यानी आजिज आना कभी नहीं आ सकता, और ना ही इनसे कोई चीज फौत हो सकती है। तो क्या पता चला कि जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा कर ले, किसी चीज को पाने का, किसी चीज का इख्तियार करने का, तो वो चीज मिलके रहेगी। फिर इसी तरह इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरत वाले हैं, जब किसी मकसद का इरादा फरमा लेते हैं तो कोई भी सल्तनत वाला इसको आजिज नहीं कर सकता। और ये कसीदा नूनिया है, बहुव अल कदीर वलैस युजिज़ुहू इज़ा मा राम शैयन कत्तुन ज़ू सुल्तान। सुभान अल्लाह, کاش ہم اللہ کے اس حق کو پہچان سکیں جو اس کا ہمارے اوپر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وسعتوں کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ اور اس بات کو جو کہی اگر دیکھے تو سورۃ فاطر کی آیت 44 میں سمجھیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اسی طرح امام سعدی فرماتے ہیں، القدیر وہ ذات ہے جو کامل قدرت رکھنے والی ہو، جس نے اپنی قدرت سے تمام موجودات کو وجود بخشا اور اپنی قدرت سے ان کی تدبیر فرمائی اور اپنی ہی قدرت سے انہیں ٹھیک ٹھیک مضبوط بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیا سو خوب کیا۔ اور آپ اس معنی کو سمجھیے ذرا، سورۃ روم کی آیت 54 میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبۃ یخلق ما یشاء ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کا ترجمہ بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرنے کے لیے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور و فکر کرتے جاتے ہیں، آپ کا دل اور کھلتا جاتا ہے۔ بس آج تو آپ کو ایک ہی لفظ سمجھ آئے گا، کن فیکون، کن فیکون۔ اور حقیقت ہے کہ القدیر ہی وہی ہے جو اپنی قدرت سے انہیں زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جزا سزا کے لیے انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ نیکوکار کو اس کی نیکی کا بدلہ عنایت فرمائے گا، اور بدکار کو اس کی بدی کا۔ اور یاد رکھیے کہ القدیر، انشاءاللہ اس کو ہم الگ بھی دیکھیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان ناموں میں 19-20 کے فرق سے کتنا کچھ ہے۔ پھر اسی طرح سے امام بیہقی کا یہ قول کہ جس کی قدرت سے باہر کوئی نہیں اور وہ اپنی طاقت اور قدرت دکھانے والا ہے، اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا، کبھی آپ دعا مانگتے اور وہ نہیں ہوتی پوری، تو یہ مت سوچئے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ نہ کرے اس کی وجہ ہے کیا؟ کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ کوئی بے بسی نہیں، ہم کوئی کام نہ کر سکے، ہم کتنے لاچار ہوتے ہیں، ہائے دل تو چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں سکے، ہائے مینس نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح سے القادر اور المقتدر کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کیسے بچے گا؟ دنیا میں بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارا سی آئی ڈی سسٹم بڑا اچھا ہے، ہمارا کرائمز کو روکنے کا نظام بڑا اچھا ہے، اور چوروں کو پکڑنا اور وہ پکڑنا کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، القادر جس پہ ہاتھ ڈال دے اس کی قدرت سے کوئی واقعی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی قدرت وسیع ہے اور اسی طرح بے انتہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی خالق حقیقی ہے۔ قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہوا دکھے گا۔ خاص طور پہ جن صفات سے انسانوں کو خاص طور پہ قرآن پاک میں روشناس کرایا گیا نا، وہ اس میں ایک چیز اللہ کی قدرت ہے، اور بے انتہا، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے میں نہ کسی کی مدد کا محتاج اور نہ ہی اس کو آلات اور اسباب کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اپنی مشیت کے اشارے سے اور صرف اپنے ارادے اور فیصلہ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے، تو کتنی ضرورت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی۔ پھر اسی طرح سے سورۃ فاطر کی ایک آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کے بس سے باہر ہو۔ کوئی بھی چیز اس کے بس سے باہر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اب کوئی بھی چیز میں آپ چھوٹی سے چیزوں کو لے کے بڑیوں کو لے لیجئے، چرند پرند، فرشتے اور اسی طرح مخلوقات، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ القادر کی گرفت سے کوئی بڑے سے بڑا نہ بچا۔ کوئی دعویٰ بھی کرے نا، انا ربکم الاعلٰ، کیسے اللہ نے پانی میں پٹخ کے رکھا اس شخص کو، سب کو نام آتا ہے، فرعون، پھر آپ دیکھیے عاد ہے، سمود ہے، اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ یہ بےچارے تو چیز کیا ہے، آپ دیکھیے آسمان و زمین کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، علم اس کا محیط ہے، قدرت اس کی کامل ہے، پھر عاجز ہو تو کیسے ہو، और अगर आप तारीख खोले ना तो जिन डॉक्टरों और तबीबों को जिस मर्ज के इलाज में महारत थी ना और उसी पे उनकी आलमगीर और कह लीजिए एक इंटरनेशनल शोहरत थी, उनका इंतकाल उसी में हुआ। बस आप देखिए कि एरिस्टॉटलिस कहते ना तप देखिए जो टीबी कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस उसके मर्ज में, और अफलातून फालिज से, और इस तरह हकीम जाले ने उस इस हाल से, और हकीम अजमल खान दिल की बीमारियों से रुखसत हुए। हालांकि ये सब अपने इन्हीं बीमारियों के कामिल माहिर और बहुत बड़े लोगों के लिए नाम थे। इंसान कभी कभी अपने महदूद मुताले और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से गलत फहमी में आ जाता है कि मैं बड़ा खुद मुख्तार हूँ, अपनी कुदरत का ऐलान करता है। लेकिन बात यह है कि यकीनी तौर पर बात अल्लाह की है। कुदरत की तरफ से मौत की सूरत में इंसान को सर से पांव तक आजिज कर दिया जाता है, बेख्तियार कर दिया जाता है। गैर यकीनी मुस्तकबिल का एक खामोश ऐलान उसको अबदियत का सबक याद दिलाता है। जरूरत इस बात की कि हम अल्लाह ताला की इस कुदरत को महसूस करें। क्या आजकल हम आप नहीं देख रहे अल्लाह की कुदरत को? मैं सोचती हूँ अगले 10 साल बाद जब ये साल लिखे जाएंगे तो क्या होगा, कैसे अल्लाह सुबहान तला ने मुख्तलिफ चीजों के सूरत में जो पिछले दौर में अल्लाह ने किया। आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िए, चाइना में एक वायरस आया था बुखार का, सार्स कहते हैं उसको। इस वायरस ने सारे डॉक्टर्स और माहरीन तिब जो थे ना उनकी अकलों को मबहूत कर दिया था। उनके एटम बम, उनकी सारी महारत लम्हात में एक तरफ होकर रह गई, और चाइना की सड़कें दिन के उजाले में रात के सन्नाटे का सबूत देती थी। मसाजिद, चर्च, बाजार सब बंद कर दिए गए। एक इंसान दूसरे से मिलते हुए डरता था कि मुझे वायरस ना लग जाए। अगर किसी को बुखार हो गया तो इसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई मिलने ना जाता कि कहीं हमें भी ना लग जाए, और वो बुखार से मरते तो नहीं। लेकिन बुखार की ऐसी दहशत सवार थी कि जिसको बुखार आया वो बेचारा अपने आप को जिंदा होते हुए भी मुर्दों में शामिल करने लगा। तो आज आपका मेरा इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? कोरोना वायरस किधर की एटमी ताकतें, कहाँ की साइंसी तरक्की, कहाँ गया वो सारा गुलगुला? पूरी दुनिया का इस वक्त एक दुख और दर्द बना हुआ, अल्लाह ही टालेगा तो टलेगी। और मैं सोचती हूँ कि दिन रात इतना इंसान खुबा हुआ चीजों में उसको परवाह भी नहीं, ये अल्लाह ही बेनियाज करता है, वरना लोग तो खौफ से मर रहे हैं। क्योंकि मिनटी आपके खौफ के साथ ताल्लुक रखती है, जिनको थोड़ी बहुत साइंस की समझ है आप जानते हैं खौफ ज्यादा बंदे को तो बीमारी से नहीं, वो सिर्फ खौफ से मर जाता है कि उसका दिल ही बंद हो गया। तो आज का कोरोना माजी के बुखार थे, कभी फुलां फ्लू हुआ। आप हिस्ट्री पढ़िए, ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी था, और कभी सोचा था आपने एक साल पे मुहित होगा? मैं सोचती हूँ पिछले साल इन दिनों में हमें अगर कोई कह देता ना अगले साल तक यही है, और हमें नहीं पता अगला साल इससे भी बात क्या आने वाला है, तो हम कांप के रह जाते हैं। तो बोलिए मालिक साहिब कुन फयकून, इस वबा से, इस आजमाइश से हमें निकाल दे, थक गए। लेकिन इसकी खैर भी समेट रहे हैं साथ साथ। बस हम ये कहते हैं कि अल्लाह तू हमें अजाबों में ना मारना, हलाक ना करना। अल्लाह कर कभी तुझे गुस्सा आया हो किसी पे तो हमें उस गुस्से में ना मारना। आज ये सब कुछ दिखता है। इसी तरह से आप देखिए अलकादिर और अलमुक्तदिर की कुदरत के नमूने हर साल मिलते हैं। कुरान कहते हैं तुम्हें नहीं पता एक साल में एक या दो बार आजमाए जाते हो। सुनामी का नाम किसने नहीं सुना, जलजले किसने नहीं सुने, हर किस्म की आफात जो आती जाती रहती हैं किसने नहीं सुनी? सबने सुनी हुई है कैसे मौजे मारता हुआ पानी बाहर आता है जब सुनामी आती है। और आप किसी भी मुल्क के बारे में देखिए जहां ऐसी कोई तकलीफ आती है लोग बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, हत्थड़ हो जाते हैं जिसको आपकी जुबान में कहते हैं। अमेरिका में हर साल कोई ना कोई सुनामी इस तरह की आती है जिसको लुजियाना स्टेट के पास अमूमन इस तरह की चीजें आई गई, फ्लोरिडा में आता है जहां पानी होता है। और इसी तरह से आप देखिए रीटा, क्रिस्टीना और इस तरह हर साल वो नाम दे देते हैं बस, और बाद में पता चला वो भी उनकी देवियों के और कुछ मजहबी नाम है। कैसे अल्लाह ताला पानी को लोगों की मौत बना दे, अल्लाह अकबर। यानी ये कैसी कादर मुतलक जात जो पानी जैसी चीज जिसमें हर चीज घुल जाती है, उसमें मिक्सड अप हो जाती है, उसमें इतनी ताकत डालता है कि वो शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क पलक झपटने में उलट दे। इसी तरह आपको पता है कि कुछ अरसा पहले मशरकी एशिया और अफ्रीका की जो पट्टी है वहां पर एक ऐसा सैलाब आया कि इसने सिर्फ 3 दिन में, क्योंकि जब सैलाब आते हैं तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 2-3 दिन में शहरों और मुल्कों के नक्शे पलट दिए। इस सैलाब और जलजले की ताकत 10,000 एटम बमों से भी कई गुना ज्यादा थी। और उस सुनामी नाम के जनी, वो सुनामी असल में समंदरी सैलाब को कहते हैं ना, तकरीबन 2 लाख इंसान हलाक हुए, और कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री से जो टूरिस्ट बन के जाते हैं ना सयाह, हजारों की तादाद में सयाह उसमें मारे गए थे जो क्रिसमस और नए साल की खुशी मनाने वेस्ट से ईस्ट में पहुंचे थे। किसी की लाश मलबे तले दबी भी मिली, किसी की लाश दरख्तों पर लटकी भी थी। हजारों की तादाद में लाशें अब भी लापता हैं। मुर्दों की तदफीन एक मसला बन गई और 1 महीने तक इज्तमाही तदफीन का सिलसिला जारी रहा। 1 माह तक लाशों को निकालते रहे। तो ये सब अल-कादिर की कुदरत का करिश्मा है।